أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. کتاب آموزش فلسفہ میں ہماری بحث درس نمبر 12 میں چل رہی ہے. درس نمبر 12 میں ایک بحث جو مقدماتی تھی آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے بیان فرمائی, وہ یہ تھا کہ فلسفہ کیوں معرفت شناسی کی طرف محتاج ہے. اگر محتاج ہے تو آپ کا دعویٰ جو پہلے تھا وہ باطل ہوتا ہے کہ فلسفے کی طرف سب محتاج ہیں, فلسفہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس کے دو جواب دیے جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے. پہلا جواب جو دیا یہاں پر وہ یہ کہ فلسفہ جن قضایا سے ڈائریکٹ استفادہ کرتا ہے وہ بدیہی قضایا ہوتے ہیں. علم منطق کے قضایا سے استفادہ کرتا ہے فلسفہ, معرفت شناسی کے قضایا سے استفادہ کرتا ہے, مطالب سے استفادہ کرتا ہے. تو حقیقت میں جو منطق کے قواعد ہیں یا معرفت شناسی کے جو مطالب ہیں وہ تنبیہی ہیں, یعنی جو توضیحات دی جاتی ہیں اس کے اندر وہ تنبیہی ہیں, استدلالی نہیں ہیں. ایک جواب یہ دیا تھا. دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ ہم جب معرفت شناسی یا علم منطق پڑھتے ہیں تو اس میں ہم علم بے علم حاصل کرتے ہیں, یعنی ہم بہت سارے قواعد چونکہ بدیہی ہیں و انسان اپنی زندگی میں اس سے حتماً استفادہ کرتا ہے, جس طرح کے بعض مثالیں آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں دی تھی, جیسے اجتماع نقیزین کے محال ہونے کو انسان جو ہے چاہے جانے یا نہ جانے اپنی زندگی میں اس سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے بغیر جو ہے وہ چارہ کار نہیں ہے تو استفادہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ علم پڑھنے کے بعد انسان کو اپنے علم کے بارے میں علم ہو جاتا ہے, یعنی جن چیزوں کو جانتا تھا لاشعوری حالت میں اس سے استفادہ کر رہا تھا, اب وہ شعوری طور پہ اس سے استفادہ کرنے لگ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم بے علم, اپنے علم کا علم حاصل کرنا. آج جو ہے وہ آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ اس 12ویں درس میں معرفت شناسی کے پہلے مسئلے میں وارد ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آیا شناخت و معرفت حاصل کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. جناب آیت اللہ مصباح یہاں پر جواب یہ دیتے ہیں کہ جو بھی انسان عاقل ہے وہ اس بارے میں یقین رکھتا ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے اس وقت, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ جان سکتا ہے. یعنی ابھی علم نہیں ہے اس کو, لیکن وہ یہ اس بارے میں علم رکھتا ہے کہ میں اس کو جان سکتا ہوں. لہذا اس اعتبار سے وہ کیا کرتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے جن چیزوں کو وہ جان سکتا ہے اس کے بارے میں پھر وہ کوشش کرتا ہے. اور یہ کوششیں ہمیں پوری تاریخ میں ملتی ہیں. کہیں پر جو ہیں وہ فلاسفہ کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں, کہیں پر دوسرے دانش مندان کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ کوششیں جو ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ وہ اس بات کا یقین و اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علم کا واقع ہونا, یعنی علم رکھتا ہوں اور علم حاصل کر سکتا ہوں, یہ دو چیزیں ہیں. عبارت دیکھیں یہاں پر, پس امکان و وقوع علم, یعنی علم واقع بھی ہے کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے, جانتا ہے اس کو, اور امکان بھی ہے بعض چیزوں کو جاننے کا. ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو کہ جو اس کے لیے مجہول ہے, بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ حاصل کر سکتا ہے. बस ये इम्कान हासिल, इम्कान है कि इल्म हासिल कर सकता है या इल्म रखता है। वुकू व इम्कान इल्म एक ऐसा मतलब है कि जिसका कोई आकिल इंसान भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ, एक इंसान जो है वो इनकार कर सकता है, वो क्या कौन है कि जिसका जहन शुबहात से क्या हो जाए, मुबतला हो जाए, मरीज हो जाए, सवालात व शुबहात उसके जहन के अंदर आ जाए अगर। लेकिन अगर कोई इससे खाली हो तो न सिर्फ ये कि वो इनकार नहीं करेगा, हत्ता वो इन चीजों में तरदीद व शक तक नहीं करेगा, यानी वो इस बात में कभी भी शक नहीं कर पाएगा कि मैं जानता हूं, किसी ना किसी चीज का तो इल्म है उसको, या वो इस बात में हत्ता शक भी नहीं करेगा कि मैं बाज चीजों का इल्म इस वक्त हासिल कर सकता हूं, कोशिश अगर करूं तो, इसमें हत्ता वो तरदीद भी नहीं कर सकता। बस ये कोई भी अकल इंसान इनकार नहीं करता। हां, बाज चीजों में इख्तिलाफ माकूल है, आकिल इंसान है लेकिन इख्तिलाफ कर सकता है, राय मुख्तलिफ हो सकती हैं, इनकार कर सकता है, तशकीक कर सकता है। कहां? पहला मसला कि इंसान के इल्म के कलमरो कितनी है, इंसान का जो इल्म है उसका दायराकार कितना है, उस दायराकार के तायीन के अंदर, मुअय्यन व मुशख्खस करने के अंदर इंसान का इख्तिलाफ हो सकता है। दूसरा मसाला जिसमें इख्तिलाफ हो सकता है वो ये कि यकीनी इल्म हासिल करने के अबजार कौन कौन से हैं, वसाइल कौन कौन से हैं, रास्ते कौन कौन से हैं। मुझे यकीनी इल्म हासिल करना है, और इल्मी यकीनी इल्म जो है वो इंसान हासिल भी कर लेता है, इम्कान है इंसान के लिए। अब ये यकीनी इल्म किन रास्तों से, किन अबजार से, किन टूल्स के जरिए जो है वो हासिल होते हैं, इसकी तशखीस के अंदर इख्तिलाफ हो सकता है। तीसरी चीज के जिसमें इख्तिलाफ मुमकिन है और माकूल भी है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर कोई इख्तिलाफ करता है, इनकार करता है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, इल्म का एक मैदान है, उसकी एक राय है, इसकी एक राय है, दलाइल रखते हैं अपने, इसमें हम मान सकते हैं कि इख्तिलाफ हो सकता है। वो क्या है? ये जो अफकार हमारे पास मुख्तलिफ मौजूद हैं, इनमें से दुरुस्त कौन सा है, इसमें से गलत कौन सा है, ये तशखीस कैसे देनी है, इस तशखीस के रास्ते में इख्तिलाफ हो सकता है। ये तीन चीजें हैं कि जिसमें इख्तिलाफ होता है। इसके अलावा भी और मसाइल हैं जिसमें इख्तिलाफ माकूल है कि इंसान इख्तिलाफ कर पाए, लेकिन अगर कोई इंसान यह आकर दावा करता है कि इल्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, मैं किसी चीज का इल्म ही नहीं रखता, इंसान किसी चीज को इल्म नहीं रखता और ना ही वो उस इल्म को हासिल कर सकता है, ये बात करना, ये इनकार करना माकूल ही नहीं है। असल कोई आकिल इंसान ये दावा जो है वो नहीं कर सकता। बात वाज़े यहां तक, आगे चलते हैं। लेकिन शहीद जो है वो आयतुल्ला मिसबाह हफ़ज़हुल्लाह जो है वो फरमाते हैं कि इसके बावजूद के इतना वाज़ह मसाला है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम यूरोप के अंदर, मगरिब जमीन के अंदर देखते हैं कि कई बार शक की जो अमवाज हैं खतरनाक किस्म की, वो वहां पर वजूद में आई हैं, और वो शक की अमवाज जो है मुख्तलिफ मकातेबे फिक्र के अंदर जो है वो उभरी हैं। मसलन आप देखें, सूफिज्म है, एक सूफिस्ताई, सूफिस्ट जिसे कहते हैं, सूफिस्ताई, उनमें से एक गिरोह कौन था, इल्म का इनकार करता था। एक और गिरोह सामने आया जो इल्म का इनकार तो नहीं करता था, वाकईयत का इनकार तो नहीं करता था, लेकिन शक था, जिसको कहते थे स्केप्टिसिज्म, शक गिराई, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, शायद ऐसा ना हो, शायद ऐसा हो, शकगिराई जिसे स्केप्टिसिज्म है। और हम तारीख फलसफा के अंदर स्केप्टिसिज्म के मुख्तलिफ अदवार पढ़ के आए हैं कि शकगिराई कभी सूफिज्म की सूरत में निकलती है, कभी अरस्तु के बाद शकगिराई स्केप्टिसिज्म का एक जमाना आता है, और कभी जो है वो दौरान जदीद के अंदर कुरून वुस्ता के बाद जो है वो जमाना आता है कि जहां पर शकगिराई का सिलसिला होता है, कि इसके ऊपर तफसील से बात हो गई, यहां दोबारा उसको तकरार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं, बहरहाल कहते हैं कि मसला वाज़ह रोशन था, लेकिन हम देखते हैं मगरिब जमीन के ऊपर जो है वो शकगिराई जो है वो वजूद में आती है। यहां पर एक मतलब जो है बयान करते हैं आयतुल्ला मिसबा, फरमाते हैं कि ये जो मुतलक तौर पर इल्म का इनकार जिक्र हुआ है तारीख फलसफा में, और फिर इस अकीदे को मंसूब किया गया है बाज अशखास की तरफ, इस बारे में हम एक तोजी तो ये कर सकते हैं कि शायद वो अफराद जहनी वसवास के बीमारी में मुबतला थे, इससे ज्यादा हमारे पास कोई तोजी नहीं है। वाइल अगर सालिम इंसान हो वो मुतलक इल्म का इनकार नहीं कर सकता, वो अगर कहे कि इल्म नाम की कोई चीज आई नहीं है, इनकार नहीं कर सकता उसका। हम कहेंगे कि ये ऐसे इंसान थे कि जो क्या था उनके अंदर जहनी वसवास जो है ना उसके अंदर मुबतला थे, उस वसवास की वजह से ये जो है ना इल्म का इनकार कर बैठे। और ये एक किस्म की नफ्सियाती बीमारी भी है, इंसान बाज औकात वसवासी हो जाता है तो इस किस्म के बाज बदीही चीजों का इनकार भी कर बैठता है। दूसरी चीज जो यहां पर बयान करते हैं वो ये कि ये बातें हम तक नकल हुई हैं, आया ये निस्बत उन अफराद की तरफ, मसलन बाज सूफिस्ताइयों के बारे में जो कहा जाता है, सूफिज्म के कायल जो थे, सूफिस्त जो थे, उनके बारे में कहा जाता है वो इल्म के इल्म का इनकार करते रहे वो, या बाद में जो मुतलक इल्म का इनकार करते आए हैं उनकी तरफ जो नस्बत दी है, हम कहेंगे कि ये नस्बत शायद गलत हो, चूंकि डायरेक्ट किताबें तो उनकी हमारे पास नहीं आई हैं, उस दौर की तो किताबें जो है वो हम तक पहुंची नहीं है, फकत अरस्तु के जरिए हम तक पहुंची हैं, और अरस्तु की किताबें भी बाद में जो है उसके अंदर बहुत सारी तहरीफें वजूद में आई हैं कि तारीख फलसफा वाले जो है वो माहिरीन इस बारे में जानते हैं। बहरहाल कहते हैं कि जो भी सूरत हाल हो, बहरहाल तारीख फलसफा में चूंकि इल्म का इनकार नकल हुआ है और उनके दलाइल नकल हुए, लिहाजा हमें बहस करनी है इसके ऊपर, ताकि अगर कोई इस सवाल के अंदर मुबतला हो जाए कि इल्म नाम की कोई चीज है या नहीं, या इल्म तक पहुंच सकते हैं हम या नहीं, इल्म को हासिल कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए जवाब जो है वो आमादा हो। ये एक मतलब था जो आयतुल्लाह मिसबाह फजाउल्लाह ने बयान फरमाया। इसके बाद जो है वो वारिद हो जाते हैं सूफिस्ताइयों के गुफ्तगू के अंदर, चूंकि सबसे पहले जिन्होंने इल्म का आके इनकार किया है और तारीख फलसफा जिसकी तरफ निस्बत देता है वो यही अफराद थे। फरमाते हैं कि ये जो शक्काक हैं तारीख फलसफा में जो जिक्र हुआ है, और सूफिस जो हैं इनके जो बाज गुफ्तगुए हैं, बाज जो दावे हैं इनके, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक जो दावा इन्होंने किया है वो वजूद और हस्ती के बारे में है, यानी इनकी गुफ्तगु क्या है, ऑन्टोलॉजिकल है, ऑन्टोलॉजी के साथ मरबूत है, हस्ती वजूद के साथ मरबूत है। और दूसरी जो गुफ्तगु इनकी पाई जाती है, जो दावा इनका पाया जाता है, वो इल्म और शनाख्त के बारे में है। बस इनकी गुफ्तगु के बारे में कह सकते हैं कि दो जंबे पाए जाते हैं, एक जंबा हस्ती शनासी के साथ मरबूत है यानी अंटोलॉजी, और दूसरा जो है वो मारिफत शनासी से मरबूत है, यानी एपिस्टमोलॉजी। मसलन सूफिज्म का एक सबसे बड़ा नाम, सूफिस्ट जो है जिसको कहा जाता है गुर्जियास या गुर्गियास, गुर्गियास इसकी एक स्टेटमेंट मौजूद है। ये कहता है, पहला इसका एक जुमला है वो ये कि कोई चीज भी मौजूद नहीं है। दूसरा इसका जुमला, अगर कोई चीज मौजूद है वो शनाख्त के काबिल नहीं है, यानी हम उसकी शनाख्त हासिल नहीं कर सकते। तीसरा जो इसका हिस्सा है वो ये कि अगर काबिले शनाख्त है भी तो दूसरों को पहचानवा नहीं सकते उसको। दुरुस्त है? पहला जुमला जो है किसके साथ मरबूत है? वजूद के साथ, कि कोई भी चीज मौजूद नहीं है। दूसरा जुमला जो है ये मारिफत शनासी से मरबूत है, क्या है कि उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं है, मैं उसकी शनाख्त हासिल नहीं कर सकता। और तीसरा जुमला भी मारिफत शनासी से मरबूत है, अगर फर्ज करें मैं उसकी शनाख्त हासिल कर सकता हूं लेकिन मैं दूसरों को पहचानवा नहीं सकता। ये इसके जुमलात हैं कि जो नकल हुए हैं तारीख फलसफा में, और अरतुल मिसबा ने इसी वजह से ही आगर कहा कि ये जुमले ऐसे हैं कि इंसान वाकई अगर आकलाना देख रहा होता है तो कभी इस तवक्को नहीं रख सकता कि इस किस्म के कोई जुमलात अदा करे आकर। और ये नाम भी बहुत बड़े, मतलब गुर्गियास जो है एक बड़ा नाम है इल्म की दुनिया का, सूफिस्ट जो था बिलाखर इस जो है वो इसने बहुत सारे इकदाम किए हैं इल्म की दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी इनसे मंसूब है ये बात। अब दुरुस्त नहीं समझा गया इनकी बात को, इस तरीके से नकल किया गया है, या ना कायल थे वो इस बात के, बहरहाल अब फैसला करने के लिए कोई मतलब हाथ में नहीं है कि मुकायसा किया जाए कि वाकई इन बेचारों ने ये कहा है या नहीं कहा है। लेकिन चूंकि तारीख फलसफा में ये नकल हुआ है और इसके ऊपर गुफ्तगू होती है और बाज इनकी नकल की हुई बातों में मुबतला भी हो जाते हैं, तो लिहाजा एक माहिर एपिस्टेमोलॉजी जो है उसके लिए जरूरी है कि वो इन दावों को तहकीक व बर्रसी करे इसकी। तो ये एक मतलब था जो यहां पर इन्होंने बयान किया। आयतुल्ला मिसबाह यहां से थोड़ा सा मजीद जो है वो बदीहियात के साथ चल रहे हैं आगे, अभी खालिस अकली इस्तेदलालों के साथ आगे नहीं चल, चूंकि ये दावे ही ऐसे हैं कि यहां पर अकली इस्तेदलाल क्या कर सकते हैं, एक तवज्जो ही दिलानी होती है। जैसे पहले भी कहा है कि मारिफत शनासी के मसाइल ऐसे हैं कि जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये इंसान जानता है पहले से, फकत ये कि उसकी तवज्जो हुआ, तनब्बो हुआ, तज़क्कुर उसको देना होता है उसमें आकर। अब आयतुल्ला मिसबाह यहां से फिर मतलब को शुरू करते हैं, कहते हैं जो इंसान भी हर चीज में शक कर ले वो अपने वजूद और अपने शक में शक नहीं कर सकता, यानी तीन चीजें हैं जिसमें वो कभी शक नहीं कर सकता, हर चीज में शक करे लेकिन उन तीन चीजों में शक नहीं कर सकता, एक अपने वजूद में कि मैं हूं, दो अपने शक के वजूद में कि मैं शक करता हूं, इस शक के वजूद में वो शक नहीं कर सकता, और तीसरा इदराकी कुव्वतों के होने में उसके वजूद में शक नहीं कर सकता, क्योंकि इदराक किस चीज से करना है? कुव्वतों से करना है ना, कुवा है, कुवाए हिस्सी है, कुवाए मसलन बीनाई है, कुव्वत शनवाई है, सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, मसलन ये तीन चीजें हैं कि जिसके बारे में, बल्कि चौथी चीज भी है, बस एक वजूद अपने वजूद के बारे में, दो अपने शक के वजूद के बारे में, तीन इदराकी कुव्वतों के बारे में जैसा कि देखना है, सुनना है, चखना वगैरह, और चौथी चीज क्या है? सूरत जहनी के वजूद में और नफसानी हालात के बारे में कभी शक नहीं कर सकता। एक नफ्सियात है ना, शक एक नफ्सियाती हालत है, इसके अंदर इंसान शक नहीं कर सकता। सूरतों का होना जहन के अंदर, सुअर ज़हनी हैं ज़हन में मेरे, इन सूरतों का कोई इनकार नहीं, मफाहिम ज़हनी का इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा आकर कहता है कि नहीं हमारे पास हैं ऐसे बंदे, या मतलब कोई एक बंदा खुद आके दावा कर देता है नहीं मुझे इनमें भी शक है, मुझे अपने होने में भी शक है, मुझे अपने शक में भी शक है, मुझे अपनी कुव्वतों में भी शक है, तो फिर यहाँ पे आयतुल्लाह मिसबाह भी कहते हैं कि ये बीमार है, इसका इलाज करवाएं, या ये झूठा आदमी है, दो हालतों से बाहर नहीं हो सकता। ये बीमार है, जैसा कि पहले कहा है कि वसवास का शिकार हो गया है, या फिर ये झूठा आदमी है, यानी एक बात को नहीं मानना चाह रहा। अब उसको पता है कि अगर मैंने इन बातों को मान लिया तो मुझे वो मतलब मानना पड़ेगा, तो कहता है मैं इसको ही नहीं मानता। जैसे वो कहते हैं मैं ना मानूं के वाली जो एक रविश है, वो आप जो है वो हर जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मुनाजरा हुआ था, को एक बंदा बहुत हावी हो गया मुनाजरे के अंदर, वो हार नहीं रहा था उनसे, तो एक बहुत ही पंजाबी में जैसे कहते हैं झटका सा इंसान, जट किस्म का इंसान जो है, जिसे आप देहाती किस्म का इंसान जो है, वो आकर कहते हैं कि मुश्किल ही नहीं है, उसको तो मैं हरा दूंगा जाके, वो तो बाएं हाथ का खेल है उनका, वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो कैसे तुम उसको हिलाओगे करके हराओगे, कहता नहीं हरा दूंगा, मुश्किल नहीं, आप मुनाजरा रखो उसके अंदर ना। अब मुनाजरे में क्या होता है, मुनाजरे का जो तरीकाकार ये होता है कि आप जो तरफ आपका कायल है उससे इस्तिफादा करके अपने मुद्दा को साबित करें, यही होता है। मतलब आप ये मानते हो, मानते हैं, बस इसका नतीजा ये निकलता है, बस मानो, ये भी है ऐसे, मतलब इस तरीके से मुनाजरा होता है। उसने मुनाजरा शुरू किया, उसने कहा ये मानते हो, कहते नहीं मानता, उसने कहा अच्छा चलें, फलाना मानते हो, कहते नहीं मानता, वो आखिरी मुनाजरे तक जो है ना वो उसने यही रट लगा के रखी कि नहीं मानता मैं, वो नहीं मानता, उसने आखिर में कहा भाई तुम जीते और मैं हारा तो वहां पे जो है वो नारे शुरू हो गए कि जनाब हम मुनाजरा जो है वो जीत गए आके। तो ये ना मानो वाली जो है वो अगर पॉलिसी पे चल रहा है तो इसका फिर अब कुछ नहीं किया जा सकता, वायला अगर इंसान आकिल हो तो वो कभी भी अपने होने में शक नहीं कर सकता, अपने शक के होने में शक नहीं कर सकता, अपनी इदराकी कुव्वतों में शक नहीं कर सकता, अपनी सूरत ज़हनी के अंदर जो है वो सूरत आई ज़हनी के दरमियान अंदर जो है वो शक नहीं कर सकता। इसके बाद फिर आगे बात बढ़ाते हैं और एक दो मिसाल लेते हैं ताकि मतलब और वाज़े हो जाए। फरमाते हैं वो शख्स के जो गुफ्तगू कर रहा है या किताब लिख रहा है, दुरुस्त है, वो अब ये नहीं कह सकता कि तरफ मुकाबिल मौजूद नहीं है। अगर तरफ मुकाबिल मौजूद नहीं तो गुफ्तगू किससे कर रहे हो? अगर किताब लिखने वाला कहता है कि मैं कलम और कागज को नहीं, उसके वजूद को नहीं मानता, तो फिर लिख किस लिए रहे? कहते हैं ये इन चीजों में कभी शक नहीं कर सकता। आकर कहते हैं ये वो चीजें हैं कि जिस जो बदीही रोशन है, तवज्जो अगर हो जाए तो आप इसमें शक नहीं कर सकते। हां कहते हैं कि यहां पर एक हो सकता है, एक बंदा आकर ये दावा कर सकता है कि मैं इनके वजूद खारजी का मुनकिर हूं और इन सारी चीजों को मैं अपने नफ्स में दर्क करता हूं, क्योंकि मैं मादा खारजी को नहीं मानता, क्योंकि मैं जौहर को नहीं मानता, कि बाद में जाके बहस आएगी। एक फलासफर गुजरे हैं गर्ब के, बारकली, बारकली जो है वो जौहर, जौहर मादी को नहीं मानता, यानी वजूद खारजी जहरी बात है वो नहीं मानेगा, जब जोहर मादी को नहीं मानेगा तो वजूद खारजी का इनकार कर देगा, वो फकत आराज को मानता है, और आराज कहां होती हैं? वो जहन में होती हैं, इसी वजह से बारकली को जो आइडियलिस्ट कहा जाता है, जहन गिरा माना जाता है इसको, जहन महवर माना जाता है इसको, क्यों? क्योंकि जोहर मादी का तो ये मुनकर है। कहते हैं कि ये आकर जो है इद्दा किया जा सकता है, लेकिन कोई आके ऊपर वाले इद्दा करे ये मुमकिन नहीं है। ये पैरा पढ़ लेते हैं चूंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत मौजूद है, और फिर आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। کہتے ہیں کہ ہم چنین کسی کے بے بحث و گفتگو میں پردازد، اسی طرح وہ شخص کے جو گفتگو کرتا ہے یا کتاب میں نویسد یا کتاب لکھتا ہے، نمی تواند در وجود طرف بحث و یا در وجود کاغذ و قلمی کے می نویسد شک کند. تو یہ شخص مقابل انسان کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی گفتگو کیوں کر رہا ہے پھر اگر وہ نہیں ہے یا شک رکھتا ہے. کاغذ اور قلم کے وجود کے جس کے ساتھ یا جس کے اوپر وہ لکھ رہا ہے اس کے وجود میں انکار نہیں یا شک نہیں کر سکتا. انکار کی بات نہیں، شک ہی چل رہی ہے، شک نہیں کر سکتا. ہاں نہایت اینست، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بے گوید کہے ہمیں آنہا را در درو میں خودم درک می گنم، ان سب چیزوں کو میں اپنے اندر درک کرتا ہوں، خارجی وجود نہیں رکھتے ہیں، میں اپنے اندر اس کو درک کر رہا ہوں. وہ اما در وجود خارجی آنہا شک دارم، میں ان کے وجود خارجی میں تو شک کرتا ہوں لیکن ان کے ہونے میں شک نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اپنے اندر ان کو درک کرتا ہوں. بس یہ کس بات کا منکر ہو رہا ہے؟ وجود خارجی کا، نہ کہ اصل وجود کا. بات واضح؟ چنان کے ظاہر سخنان بارکلی و بعضی دیگر از آئیڈیالسٹ ہا اینست، جیسا کہ کہتے ہیں کہ بارکلی کی جو گفتگو ہے اس کا ظاہر یہ ہے. اب ظاہری سی بات ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں حقیقی مراد اس کی کیا ہے، اس کے ممکن ہے کوئی اور سمجھا اس کو غلط گیا، لیکن بہرحال جب پڑھیں گے وہاں جا کر مطلب کو تو اس پر گفتگو ہوگی. بارکلی کی گفتگو کا جو ظاہر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وجود خارجی یعنی جوہر کا منکر تھا. وہ بعض دوسرے بھی جو آئیڈیالسٹ ہیں وہ بھی جو ہیں وہ تقریباً اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ایشون ہمیں مدرکات رفقت بے عنوان صورت ہے یہ درون ذہنی میں پذیرند. یہ آئیڈیالسٹ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، مدرکات کو فقط اپنے اندر صورت ذہنی کے عنوان سے قبول کرتے ہیں و وجود خارجی آنہارا انکار کرتے، ان کے خارجی وجود کو قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں. ولی وجود انسان ہا یہ دیگری را کہ دارا یہ ذہن و ادراک ہستن قبول داشتن، کہتے ہیں یہ جتنے بھی آئیڈیالسٹ ہیں یہ واقعیت کے قائل تھے، یہ دوسروں کے وجود کے قائل تھے، اس میں شک نہیں تھا ان کو. وہ فقط یہ کہتے تھے کہ اشیاء جو ہیں وہ کیا ہے، وہ جوہر نہیں رکھتی ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ صورت ذہنی ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جو ذہن رکھتی ہیں، خود ذہن رکھتی ہیں، مثلا انسان ذہن رکھتا ہے، یہ وجود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں وجود رکھتے ہیں، اس کے وجود، اس کی چیز، اس کے منکر نہیں تھے وہ. ولی چنین نظر نظری بے معنی نفی مطلق یا مطلق وجود نہیں. اس کہتے ہیں ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، اس جھگڑے سے نکل آئے گا. ہماری بحث کہاں شروع ہوئی تھی کہ ایک فرقہ ہے ایسا کہ جو مطلق علم کی نفی کر رہا ہے، یہاں تو ایسا نہیں ہے بلکہ انکار موجودات مادی، چنان کہ از بارکلی نقش شدہ بے معنی انکار بعضی از موجودات، بلکہ یہ کیا ہے، بعض مادی موجودات کے منکر ہیں، جس طرح کہ بارکلیس کی طرف سے نقل ہوا ہے. بس اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بعض موجودات کے منکر ہیں. وہ شک در آنہا بے معنی شک دربارے بعضی از معلومات، اگر اس میں شک بھی کرتے ہیں تو وہ بعض معلومات کے بارے میں شک ہے، نہ کہ شک کے مطلق، کہ ہر چیز میں شک کرنا، نہ، بعض چیزوں میں شک ہوگا اس میں. بات واضح یہاں تک، کوئی وہم تو نہیں ہے. خوب یہاں تک جو ہے انہوں نے یہ مطلب بیان کر دیا کہ اگر کوئی شک کے مطلق کرنا چاہتا ہے تو وہ انسان مریض ہو سکتا ہے یا مغرض، غرض رکھتا ہے وہ، مرض رکھتا ہے وہ، مثلا اس قسم کی کہ نہ مانوں کی پالیسی پہ چل رہا ہے وہ. اب مطلب آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھا کر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی بندہ آ کر یہ دعویٰ کر دے कि यकीनी शनाख्त मौजूद नहीं है, मुमकिन नहीं है कि यकीनी शनाख्त हो। यकीन किसे कहते हैं? अभी सादा सा इसका माना करते हैं, बाद में कहीं तफसील उसको बयान करेंगे। यानी 100% एक चीज के बारे में आपको इल्म होना, जिसको हम सदरसद कहते हैं। कहते हैं इस किस्म का इल्म के जो 100% हो, यकीनी हो, यह मुमकिन नहीं है। आपको यकीनी इल्म हासिल नहीं हो सकता। दुरुस्त है? अगर कोई आकर यूं इद्दआ करे, तो आयतुल्लाह मिसबाह फरमाते हैं हम इसी से फिर सवाल करते हैं, नकली जवाब दे रहे हैं, और इनसे नकली जो है वो बहस हो सकती है। हली बहस करेंगे अगले दर्स में, हम हली बहस के अंदर वारिद हो रहे हैं, लेकिन इस दर्स में हम फकत नकली जवाब देंगे। नकली जवाब तो मालूम है ना, मैंने तोजी दे दी थी नकली जवाब की एक दर्स के अंदर। नकली जवाब क्या होता है? अगले बंदे को चुप कराना होता है। दूसरा, जैसे अभी चुप कराएंगे, पहले भी वजाहत कर दी थी। क्या एक बंदा अगर कहता है कि किसी किस्म का यकीनी इल्म मुमकिन नहीं है कोई रखे, इम्कान ना दारद, मुमकिन नहीं है कि यकीनी इल्म मौजूद हो, हम उससे सवाल करते हैं कि ये जो तुम जुमला बोल रहे हो, इसके बारे में तुम्हें इल्म है, यकीन है या शक है? ये जो जुमला बोल रहे हो कि किसी किस्म का यकीनी इल्म वजूद नहीं रखता, ये जो जुमला है, ये जो कजिया है, प्रोपोजिशन है, इसके बारे में तुम्हें इल्म व यकीन है या इसके बारे में शक है? अगर कहे कि मैं जानता हूं इसके बारे में, इल्म रखता हूं इसके बारे में, यकीन रखता हूं इसके बारे में, तो फिर वो जो तुम कजिया बयान कर रहे, किसी किस्म का कोई यकीनी इल्म मौजूद नहीं है, तो ये बात तुम्हारी गलत साबित होती है। क्यों? कम अज कम एक इल्म तो मान रहे हो तुम, यकीनी इल्म को, यकीनी इल्म को एक, कम अज कम एक को तो मान रहे हो आकर। बस तुम्हारा ये दावा का कायम करना कि किसी किस्म का यकीनी इल्म मौजूद नहीं, खुद ब खुद बातिल हो जाता है। तुम्हारे इसी कलाम के अंदर उसका बुतलान मौजूद है, क्योंकि तुमने इसका एतराफ किया है कि कम अज कम ये जुमला जो है वो दुरुस्त है। तो ये जुमला खुद जो है, इसको कहते हैं पैराडॉक्स। लेकिन अगर वो आकर कहे कि ना मैं नहीं जानता, अगर वो यूं आकर कहे, तो फिर क्या होगा? यूं होगा, इबारत देखें इसकी। कहते हैं कि अगर बेगुयद, अगर कहे नमी दानम, मैं नहीं जानता, मानाश इनस, इसका माना यह है कि एहतमाल मी दहम मारफत यकीनी मुमकिन बाशद। ये यूं आकर पकड़ रहे हैं इसको। क्या है देखें, दोबारा मैं इसको बयान कर देता हूं। जब उसने ये कहा कि किसी किस्म का इल्म यकीनी मौजूद नहीं है, तो हमने कहा कि इसके बारे में तुम्हें यकीन है या यकीन नहीं है? अगर कहे कि यकीन है, तो आप अपने मुद्दा को नकज कर रहे हो। अगर वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि इसमें भी यकीन है, तो फिर आयतुल्लाह मिसबाह फरमाते हैं कि कम अज कम एक एहतमाल तो देते हो ना कि शायद ये यकीनी हो, क्योंकि शक का मरहला यही होता है ना, कि शायद यकीनी हो, शायद यकीनी ना हो। तो एक एहतमाल तो तुम दे रहे हो ना कि मारफत यकीनी मुमकिन हो। बस असुए दीगर सुखने खुदरा इब्ताल नमूदे अस, बस एक और जहत से अपने अपने कलाम को बातिल कर रहे हो। उसने क्या कहा था? किसी किस्म की यकीनी इल्म मुमकिन नहीं है मौजूद हो। यहां आकर कह रहा है कि मुझे इस कजिए के बारे में यकीन नहीं है। अगर तुम इस कजिए के बारे में यकीन नहीं है, तो इसका मतलब है तुम इस यकीन के बारे में शक करते हो। अगर शक करते हो, तो दोनों तरफ उसकी हालतें मुमकिन है कि यकीनी हो, मुमकिन है यकीनी ना हो। तो एहतमाल तो है यकीनी होने का, तो तुम तो कह रहे हो कि हो ही नहीं सकता यकीनी इल्म। यहां तो आगे तुम फंस गए हो, यानी कम से कम एहतमाल तो दे रहे हो कि यकीनी इल्म हो सकता है। तो लिहाजा तुम किसी तरीके से भी इस बात से निकल नहीं सकते। बस अगर कोई आपके सामने ये इद्दआ कर दे कि यकीनी इल्म जो है, शनाख्त यकीनी जो है, वो किसी किस्म की मौजूद नहीं है, तो उससे आप इस किस्म की बहस कर सकते हैं। और ये याद रखें, आपको जवानों में ऐसे अफराद बहुत मिलेंगे जो इस किस्म के जुमले अदा करेंगे। लिहाजा अपना तवज्जो रखें, मतलब को याद रखें, और उनको जवाब आप इसी तरीके से ही दे पाएंगे। और वो अपने मतलब से जो है वो हट जाएंगे। अगर ये जहन में नहीं रखेंगे मतलब, तो आपको यूनिवर्सिटी के जवान जो फ़लसफ़े से शगफ़ रखते हैं, जो मसलन उलूम इंसानी में पढ़ रहे हैं या इस किस्म के उलूम की तरफ जा रहे हैं या मुतालात करते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अकलानियत को पसंद करते हैं, तो ये बातें चूँकि उन्होंने पढ़ी हुई होंगी, उनके जहन में ये सवालात हैं, इसी तरीके से अदा किए होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप चूंकि एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो यकीनी इल्म के अंदर है और आप महसूस करें तो बेकार सी बातें हैं, इसको क्या मसलन जो है तवज्जो करने की ज़रूरत है या क्या पढ़ने की ज़रूरत है इसको मसलन, ना, ये जो बयान किया जा रहा है मौजूद हैं, अब किताबें लिखी जा चुकी हैं इसके ऊपर, दूसरों को काने करने के लिए मकालात लिखे जा चुके हैं कि किसी किस्म की कोई यकीनी शनाख्त, यकीनी इल्म मौजूद नहीं है, मुमकिन नहीं है कि मौजूद हो अपनी उस फिक्र को साबित करने के लिए, यकीनी इल्म का इनकार करते हैं आकर। तो ये दो जवाब जो, यानी एक ही मतलब बयान किया और दोनों तरफ, चाहे वो कहे मैं जानता हूं तब भी फंसता है, अगर कहता है मैं नहीं जानता तब भी फंसता है, ये कजिया जो है वो उसको मुश्किल में डाल देता है। इसके बाद फिर एक और सवाल की तरफ जाते हैं कि इंशाल्लाह इसको फिर बाद में देखते हैं, जो वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।